देख संगम का आनंद, हर गम चला गया, मिला मीठा परिवार, ये एहसास हो चला। देख संगम का आनंद, हर गम चला गया, मिला मीठा परिवार, ये एहसास हो चला। उजड़े जहां चमन में फिर से फूल खिलेगा, कभी सोचा नहीं था भगवान मिलेगा, स्वर्ग से भी सुंदर संसार मिलेगा, कभी सोचा नहीं था। संसार जिसको ढूंढे मेरे साथ वो है रहता, हम उनको याद करते वो हमको याद करता, हो संसार जिसको ढूंढे मेरे साथ वो है रहता, हम उनको याद करते वो हमको याद करता, तरसते नन जिसको वो रोज दिखेगा, कभी सोचा नहीं था भगवान मिलेगा, स्वर्ग से भी सुंदर संसार मिलेगा, कभी सोचा नहीं था। जिस दिन से उसने मुझको अपना बना लिया है, बच्चे तू चिंता मत कर, मैं हूं ना कह दिया है, हो जिस दिन से उसने मुझको अपना बना लिया है, बच्चे तू चिंता मत कर, मैं हूं ना कह दिया है, हो ज्योति बिंदु शिव मुझे साकार मिलेगा, कभी सोचा नहीं था भगवान मिलेगा, स्वर्ग से भी सुंदर संसार मिलेगा, कभी सोचा नहीं था।
ओम शांति। आज के प्रातःकालीन सत्र में हमारे बीच में पधारे हैं आदरणीय राजयोगी भ्राता डॉक्टर प्रेम मसन भाई जी। एक हाथ हिलाकर भ्राता जी का स्वागत, सत्कार, अभिनंदन। आप सेठों की नगरी इंदौर से निकले ईश्वर के अनमोल रतन हैं। 1979 में आपने अपनी मेडिकल स्टडीज पूरी की और 1980 में आपको ईश्वरीय ज्ञान मिला। तो लौकिक क्वालिफिकेशन और बाबा का साथ लेकर आप विदेश गए, 10 वर्षों तक अपनी प्रोफेशनल जॉब की और पुनः भारत में आकर मुंबई में 5 वर्षों तक अपने मेडिकल फील्ड से रिलेटेड जॉब की और फिर 1996 में जब यज्ञ अपनी हीरक जयंती मना रहा था, आपने अपना जीवन ईश्वरीय सेवाओं के लिए समर्पित किया और हेडक्वार्टर में रहना आरंभ किया। आप विशेषतः रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट हैं और हमारा जो शांतिवन में एवर हेल्दी हॉस्पिटल है वहां पर अपनी ऑनरेरी सर्विसेज देते हैं और इसके साथ साथ जो हमारा मेडिकल विंग है उसके साथ भी आप एसोसिएटेड हैं। आपकी सेवाओं का बहुत कंट्रीब्यूशन है उसमें और साथ साथ देश और विदेश में भ्रमण करते हैं और जन जन में हेल्थ अवेयरनेस और स्पिरिचुअल अवेयरनेस क्रिएट करते हैं। आज हमारे बीच में है बहुत सुंदर विषय के साथ पत्थर बुद्धि और पारस बुद्धि। तो सुनते हैं भ्राता जी से, आदरणीय भ्राता जी।
ओम शांति। बहुत अच्छा आज का दिन है, लॉर्ड गणेश का है और गणेश का यही कहा जाता विघ्न विनाशक। प्रॉब्लम को, चैलेंजेस को कैसे सॉल्व करें, सॉल्यूशन ओरिएंटेड। चैलेंजेस रहते हैं तो सॉल्यूशन भी रहते हैं। दूसरा कैरेक्टर दिखाया विजडम मास्टर, बुद्धि। और आज का सब्जेक्ट ही है पत्थर बुद्धि और पारस बुद्धि। सुबह मुरली में भी बाबा ने वर्णन किया और उसमें हाईलाइट किया कि जितना मेरे को याद करोगे, जितनी याद अच्छी होगी, पावरफुल होगी, अमृत वेला होगी, पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बनेंगे। माइथोलॉजी में एक उल्लेख है, प्रसंग है, अहल्या करके एक बहुत ब्यूटीफुल ब्रह्मा की मानस पुत्री थी, उसका विवाह ऋषि गौतम से हुआ था। कुछ कंफ्यूजन और कन्फ्लिक्ट के कारण ऋषि गौतम ने श्राप दिया अहल्या को और अहल्या स्टोन शिला में परिवर्तन हो गई। पर यह भी कहा जब प्रभु श्री राम के चरण स्पर्श होंगे वापिस जीवित हो जाएगी और वो हुआ जो उल्लेख है। और बाबा ने मुरलियों में काफी बार इसका उल्लेख भी किया। पत्थर स्टोन का अर्थ है हार्ड, सख्त। इसीलिए पत्थर को तोड़ना पड़ता है, कभी कभी काफी मेहनत करना पड़ती है। सत्ययुग से लेकर कलयुग अंत तक जब तक संगम नहीं आता, हमारा पाठ शुरू होता है परम धाम से, नीचे उतरते हैं। जब परम धाम में है तो वहां न्यूट्रल अवस्था है। परम धाम एक एटॉमिक एनर्जी का सेंटर है, ऊर्जा का सेंटर है, क्योंकि वहां शिव बाबा भी है, सोर्स भी है और जो रहने का स्थान है वो भी एनर्जी फुल है। वहां पर कोई एक्शन नहीं होता। जैसे आत्मा जिस अवस्था में गई थी, जिस एनर्जी को लेकर गई थी, जिस प्यूरिटी को लेकर गई थी, उसी अवस्था में वहां रहती है अपने अपने सेटअप में। जैसे ही उतरती है तो पूरी ऊर्जा के साथ, स्वतो प्रधान बुद्धि के साथ, गोल्डन इंटेलेक्ट के साथ उतरती है। इसलिए सत्ययुग और त्रेता में भी पारस बुद्धि है, गोल्डन एज बुद्धि है। अब हमेशा गोल्ड से ही क्यों कंपेयर किया जाता है? 24 कैरेट सोना, 22 कैरेट सोना, उसकी यूनिट है। गोल्ड ज्यादातर स्टेबल रहता है, उसको ढाला जाता है, उसमें अलॉय डाले जाते हैं, उसकी शुद्धता को मिक्स किया जाता है और उन्हीं के अनुसार जेवर भी बनते हैं। पर 24 कैरेट का अर्थ है कि 100% 99.99 शुद्ध है, गोल्ड है उसमें। और सत्युग और त्रेता में हमारी अवस्था वैसी रहती है, वहां करप्शन, अलॉय, विकार कुछ नहीं रहता, इसलिए शुद्धता रहती है, प्यूरिटी रहती है, नेगेटिविटी नहीं रहती है। फिर जैसे नीचे उतरते जाते हैं, कलाएं कम होती जाती है, प्यूरिटी कम होती जाती है, और कलयुग के अंत में कलाएं बिल्कुल खत्म हो जाती है और फिर संगम स्टार्ट होता है। जब हमारे में द्वापर से विकार मिक्स होने लगते हैं, बॉडी कॉन्शियस आ जाता है, देहभान और देह अभिमान आ जाता है, हर चीज में ड्वेलिटी आ जाती है। द्वापर का अर्थ ही है दो, ड्वेलिटी आ जाती है, तो बुद्धि में भी ड्वेलिटी आ जाती है और वो चलती रहती है कलयुग के अंत तक। साइकोलॉजी में देखें, सबसे बड़ा प्रॉब्लम मनुष्य का, तनाव का, यही रहता है ड्वेलिटी। ड्वेलिटी का अर्थ है करूं न करूं, करूं तो क्या होगा, न करूं तो क्या होगा, दोनों में प्रॉब्लम। और आज वही स्थिति है, बाहर की दुनिया में भी डिसीशन लेना, निर्णय लेना बड़ा डिफिकल्ट है। लें तो इंक्वायरी, न लें तो इंक्वायरी, इतना रफ टफ क्रिटिकल वेदर है, इन्वायरमेंट है। पर जिनकी बुद्धि अच्छी शुद्ध रहती है, ड्वेलिटी नहीं रहती है, वो लोग निर्णय फास्ट लेते हैं। एक जैन मुनि, बहुत अच्छी आईआईटी ग्रेजुएट से पूछा गया था कि सबसे बड़ा प्रॉब्लम हम लोगों का क्या है, फॉरेन में लोग जितना पढ़ते हैं पर हाई लेवल पर, टॉप लेवल पर पूरा कंट्रोल करते हैं खेल को, हमारे यहां से बच्चे पढ़कर, बहुत अच्छा पढ़कर जाते हैं, वो उनके अंडर काम करते हैं क्यों? मेरे को बड़ा अच्छा लगा ये क्वेश्चन। आंसर उसका यही था कि हम लोगों में ड्वेलिटी ज्यादा रहती है, ये हम लोग बचपन से ऐसे ट्रेंड होते हैं, मां बाप, मीडिया, एनवायरमेंट हमें पूरा फीड करता है। एक बच्चे के अंदर जो मां के पेट से 7 साल तक 9 साल तक 3 लाख प्रोग्राम डाउनलोड कर लेता है, एक बच्चा, एक आत्मा 7 साल 9 साल तक 3 लाख प्रोग्राम डाउनलोड कर देती है, उसके अंदर न चाहते हुए वो प्रोग्राम आ जाते हैं बाय ऑब्जर्वेशन। कॉन्शियस माइंड काम नहीं कर रहा उस समय, पर जो भी वो देख रहा है, सुन रहा है, समझ रहा है, सब अंदर आ जाता है और वही बड़े होने पर उसकी पर्सनालिटी बनाता है। उसका पर्सनालिटी का फॉर्मेशन ही बचपन से हो जाता। तो जितने भी साइकोटिक न्यूरोटिक डिप्रेशन के प्रॉब्लम आते हैं शुरू हो जाते हैं उस पर्सनालिटी फॉर्मेशन से। तो ड्युअलिटी का अर्थ है हम डिसीशन निर्णय लेने में सक्षम नहीं है, हमें डिपेंड होना पड़ रहा है, किसी से वेरीफाई करना पड़ रहा है, आधारित हैं। पर बाबा हमें क्या कर रहा है, निराधार बना रहा है। फिजिकली ठीक है पर मेंटली इमोशनली साइकोलॉजिकली बाबा हमें इंडिपेंडेंट बना रहा है। बाहर से डिपेंडेंट हूं पर अंदर से इंटरडिपेंडेंट हूं, सॉलिड हूं, तभी आज की दुनिया में हम सर्वाइव करेंगे। क्योंकि निर्णय एक सेकंड में लेना पड़ता है, उस समय टाइम नहीं रहता कि मैं पूछूं, मैं ये करूं, मैं ये करूं। एक सेकंड के डिसीजन में मैच हारा जाता है और जीता जाता है। लास्ट ओवर में 17 रन बनाने हैं, उनको बनाने हैं। कौन सा खिलाड़ी जाएगा खेलने, कौन सा बॉलर फेंकेगा, उसको डिसीजन लेना पड़ता है और वही मैच जीतता है। तो स्किल्स 20% सक्सेस देती है। हम गोल्ड मेडलिस्ट हों, आईक्यू हमारा अच्छा है, बाबा का ज्ञान बहुत अच्छा है, 20%। 80% सक्सेस होती है स्ट्रेटजीज से। स्ट्रेटजीज का अर्थ है युक्ति युक्त। नॉलेज है, सब पढ़ा हुआ है, मूल्यां रटी हुई है, पर उसका यूज करना नहीं आता है तो मैं फेल्योर हूंगा। क्योंकि किस समय कौन सी परिस्थिति आती, उस परिस्थिति में कौन सा गुण कौन सी शक्ति चाहिए, एक सेकंड में डिसाइड करना। और मैं भी रिएक्ट कर गया, बोल दिया तो मैच हार गया। ज्ञान तो था, योग करता था, पर मैच्योरिटी नहीं थी, कॉन्फिडेंस नहीं था। तो गोल्डन बुद्धि का अर्थ है, पारस बुद्धि का अर्थ है मैच्योरिटी, कॉन्फिडेंस, पवित्रता, शुद्धता। हिंदी वर्ड अच्छा है, शुद्धता। शुद्धता का अर्थ है नेगेटिविटी नहीं है, एक भी मिक्सचर नहीं है, व्यर्थ संकल्प नहीं है। पारस पत्थर का भी मैंने एनालिसिस किया कि रियली होता है क्या पारस पत्थर। काफी खोजा, हार्डली एक दो वर्णन आए किसी ब्रिटिश राइटर के कि वो था राजा के पास, उसने दे दिया, उसने नदी में फेंक दिया और तब से अभी तक है ही नहीं। अगर पारस पत्थर होता तो फिर तो प्रॉब्लम ही नहीं था, फिर तो लोहे को सोना टच करो और सोना ही सोना हो जाता, सबके मकान सोने के होते, सड़कें सोने की होती जो गोल्डन एज में होगी। उसका माइथोलॉजी में उल्लेख बहुत कम है, पर एक आ गया कि पारस से लोहा गोल्ड हो जाता है। अब उसका अगर एनालिसिस करें हम, उसका अर्थ है कि परमात्मा की जो टचिंग संगम पर हमें मिलती है, जब वो हमें टच करता है कि तू आत्मा है, मैं कौन, मेरा कौन और मुझे क्या करना है, ये दादी जानकी जी के 3 वर्ड जब हमारे को क्लियर हो जाते हैं तो हम गोल्ड बनना शुरू हो जाते हैं। जिसको हिंदी में कहा जाता है संघ का रंग चढ़ता है। जैसी हमारी कंपनी रहती है, दोस्त रहते हैं, पिता माता रहते हैं, फैमिली रहती है, वैसा कलर हमें आने लगता है। तो हमारे संघ में भी जो आते हैं उनमें भी परिवर्तन आ जाता है। पारस बुद्धि, पत्थर बुद्धि। पत्थर बुद्धि यानी मैं डिसीजन ले ही नहीं पा रहा था, डरता था, घबराहट आती थी। अब मैं पारस बुद्धि बन गया, गोल्डन इंटेलेक्ट बन गया, तो डिसीजन, जो बाबा का वर्ड है कर्मातीत। कर्मातीत का अर्थ क्या है? कर्म करो पर कर्म का रिजल्ट और बंधन में मत आओ। मेरा काम है केवल कर्म करना, उसका क्या होगा उससे मैं घबरा नहीं रहा हूं, उसके बंधन में नहीं आ रहा हूं। दूसरा, उसका अतीत क्या है? कर्मातीत, अतीत, कर्मा अतीत। अतीत भी मेरे को डरा नहीं रहा है। जो संस्कार हमारे अंदर 63 जन्मों के हैं उसमें पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हैं। रिकॉर्डिंग पूरी मेमोरी डाटा पड़ा हुआ है। ब्रेन में भी कुछ एरिया ऐसे होते हैं जिसको मेमोरी डाटा सेंटर कहते हैं, एमीगुलाइड और हिप्पोकैम्पस, वहां पर मेमोरी पड़ी रहती है। आत्मा उन सेंटर्स के द्वारा एक्सप्रेस करती है, जिसको बाबा ने हमें समझाया संस्कार, सबकॉन्शियस। हमारे अंदर मन है, बुद्धि है, संस्कार है। इंग्लिश में कहें तो MIS, माइंड इंटेलेक्ट सबकॉन्शियस। इसको ट्रांसफर करें मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, MIS, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम सॉफ्टवेयर हमारे आत्मा का काम करता है, ब्रेन के द्वारा मैसेजेस भेजता है। हमारी बॉडी टोटल हार्डवेयर है। जो यहां हो रहा है सॉफ्टवेयर में वो हार्डवेयर में होता है। बॉडी केवल एक्सटेंशन है, उसकी कवरिंग है, आवरण है, ड्रेस है। जब बॉडी बड़ी होती है मदर के वूम में, आत्मा तो अभी एंट्री नहीं करी है, फिर भी उसका डेवलपमेंट होता है। जड़ है पर उसके ऑर्गन डेवलप होते हैं, और जैसे ही आत्मा घुसती है वो एक्टिव हो जाती है, चैतन्य हो जाती है। पर चैतन्य के पहले जड़ थी, उसका ग्रोथ था। ऐसे ही हर चीज में ग्रोथ है, उसका डिके होता है। अभी ये इसमें भी चैतन्यता है, बर्ड्स में भी है, पर डिके होता है, एनर्जी डाउन होती है। तो जड़ बुद्धि और चैतन्य बुद्धि कहते हैं जड़ है। ये जड़ है यानी टोटली उसके जो कवरिंग है, ऑब्जर्वेशन है, जीने की इच्छा है, वो नहीं है। डिप्रेशन है, क्योंकि आज सबसे बड़ा प्रॉब्लम मेडिकल साइंस में कौन सा आ गया है, चाहे हृदय रोग की बीमारी हो, टाइप 2 डायबिटीज हो, हाइपरटेंशन हो, स्ट्रोक हो, कैंसर हो, उसके बाद सबसे बड़ा प्रॉब्लम पूरे वर्ल्ड में डिप्रेशन का हो रहा है। अगर ये कंटिन्यू रहा तो आने वाले समय में डिप्रेशन विल बी द लीडिंग कॉज ऑफ डेथ। डिप्रेशन एक मृत्यु का मुख्य कारण बन जाएगा, क्योंकि लोगों में निराशा, खुशी गायब हो गई है। जड़ता का अर्थ क्या है? चैतन्यता नहीं है। चैतन्यता नहीं है यानी ना कुछ है, ना कुछ है, ना इमोशन है। और अगर हम भी घर से सेंटर की तरफ जा रहे हैं और जड़ जा रहे हैं, चेहरे पे कोई रौनक नहीं है, ये नहीं, तो लोग कहेंगे ठीक है ये हमारे जैसे ही है। पर अगर हमारे में चैतन्यता है, चेहरा चमक रहा है, खुश है, तो लोग कहेंगे कुछ गड़बड़, कुछ हमारे में गड़बड़ है, ये लोग क्या है इनमें। इसीलिए बाबा कहता है चलन और चेहरे से सेवा करनी है। अब आने वाली सेवा नहीं, मैं आने वाला वर्ड तो खत्म हो गया। अब जो चल रहा है समय, मैंने देखा पिछले 3 साल में कोरोना के बाद पलट गया, टोटली शिफ्ट हो गया। कोरोना के बाद लोगों में एंजाइटी बढ़ गई, चिंता बढ़ गई, अनसर्टेनिटी बढ़ गई, डर बन गया, बिल्कुल खेल बदल गया। अब लोग सुनना भी नहीं चाहते, जो बाबा ने पहले ही कहा था कि ऐसा समय आएगा जब लोग सुनना पसंद नहीं करेंगे। अभी मैंने जितने भी शिविर कराए, जितने भी विंग्स की वर्क कराई, मैंने देखा चैतन्यता खत्म हो गई, खुशी, हैप्पीनेस। इसलिए लॉफिंग थेरेपी कराना पड़ता मेरे को भी उसमें, कि हंसो हंसो। सीरियसनेस इज ए पैथोलॉजी, ह्यूमर इज ए फिजियोलॉजी, चेतन भगत ने कहा। सीरियसनेस का अर्थ है यानी हम बहुत सीरियस हैं, ज्ञान आ गया है पर सीरियस हैं, तो इसका अर्थ है कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है। और बाबा इसलिए बार बार कह रहा है अब समय सेवा का पलट गया, सेवा का अब खेल आ गया है चलन चेहरे वाइब्रेशन से। मैं केवल एक ही देख रहा हूं, वाइब्रेशन अब बहुत पावरफुल हो गया है। आज स्पोर्ट्स पीपल, फिल्म एक्टर्स भी कह रहे हैं आई नीड वाइब्रेशन, तो खेल पलट गया। इसीलिए पावर ऑफ वाइब्रेशन चाहिए, चैतन्यता चाहिए, कॉन्शियसनेस चाहिए, तब जाके ये चेहरे हमारे खुश रहेंगे। जड़ता और गोल्डन इंटेलेक्ट, बुद्धि, बाबा ने हमें जन्मतः से ही, ब्राह्मण जन्म का सीक्रेट ही क्या है, दिव्य बुद्धि, रूहानी नेत्र, ये 2 चीजें हमें गिफ्ट में दी है। दिव्य बुद्धि, डिवाइन इंटेलेक्ट और रूहानी दृष्टि। यहां पर वो एग्जाम्पल बड़ा अच्छा फिट होता है कि हमें होली हंस बनना है। अगर गोल्डन इंटेलेक्ट बनना है, पारस बुद्धि बनना है, तो हमें हंस बनना पड़ेगा। दिव्य बुद्धि, हंस बुद्धि, हंस वृत्ति, हंस दृष्टि, हंस मुख। मुख से क्या बोलना है? रत्न निकालने, पत्थर नहीं निकालने। अगर मैं अभी भी गुस्सा कर रहा हूं, कुछ बोल रहा हूं, इसका मतलब है अभी भी मैं जड़ बुद्धि हूं। संकल्पों में भी नेगेटिविटी ना आए, हर एक के लिए शुभ भावना, शुभ कामना रहे। कोई कैसा भी हो, वो मेरे को अप्रिशिएट कर रहा है, नहीं कर रहा है, पॉजिटिव बोल रहा है, नेगेटिव बोल रहा है, फिर भी संकल्प शुभ भावना वाले हैं। आत्मिक दृष्टि, भाई भाई की दृष्टि, तब तो मैं गोल्डन इंटेलेक्ट बनूंगा, पारस बुद्धि बनूंगा, क्योंकि सत्ययुग त्रेता में कोई किसी को कुछ नहीं कहता, सब अपना खेल खेलते रहते हैं, न राइट न लेफ्ट, कोई किसी को देखता ही नहीं है, सबके चेहरे चमकते हैं, दमकते हैं, उमंग उत्साह में रहते हैं। वही कैरेक्टर मेरे को संगम पर बाबा ट्रेन कर रहा है। संगम है ही ट्रेनिंग पीरियड। यहां पर हम सीख रहे हैं कि जो फ्यूचर है उसको प्रेजेंट में ला रहा हूं, फ्यूचर से फ्यूचर को दिखाना है। अगर इस समय मेरे फ्यूचर पॉजिटिव नहीं है तो वहां भी मेरा जॉब क्या होगा, ड्यूटी क्या होगी मालूम नहीं। इसलिए बोलने का कम हो गया। आजकल तो सिखाया जा रहा है मैनेजमेंट में कम्युनिकेशन स्किल्स। कम्युनिकेशन स्किल्स अब पूरी पलट गई। पहले सिखाया जाता था वोकल कार्ड यहां है बोलने वाला, जो बोलता है वो यहां पर बैठा है, उसका डिस्टेंस हार्ट से उसका डिस्टेंस हेड से इक्वल है, बीच में पड़ा है। इसका अर्थ क्या है? जब बोलो धीरे बोलो, मीठा बोलो, प्यार से बोलो, सोचकर बोलो। आज एक शब्द भी गलत बोल देते हैं तो देखो टीवी पर कितना हड़कंप मचता है। इसलिए बोलना कमी है, और नहीं बोलना है तो साइलेंस में रहो। आजकल ये ट्रेनिंग दी जा रही है लीडर्स को, दो में से एक ही आंसर। मैं भी जब मेडिकल सुपरिटेंडेंट था, एमएस था, तो मेरे सीनियर ने मेरे को सिखाया था कि जब कभी भी कोई वीआईपी भर्ती हो हॉस्पिटल में, आईसीयू में, मीडिया आपको प्रवोक करेगा हाउ ही इज, तो आपको दो में से एक ही आंसर देना है। पहला आंसर इज क्रिटिकल बट अंडर कंट्रोल, दूसरा नो आंसर। आजकल नो आंसर पॉपुलर हो रहा है। और वो बाबा प्रैक्टिस करा रहा है। अगर मेरी गोल्डन इंटेलेक्ट होगी, पारस बुद्धि होगी, मैं परख लूंगा कि ये व्यक्ति क्या कर रहा है, क्या सोच रहा है। परखने की शक्ति पारस बुद्धि वाले को आ जाएगी और वो जान जाएगा कि ये किस एंगल से आया है। और जैसे जैसे हम संकल्पों को रीड कर लेंगे, हम संपूर्णता के नजदीक आएंगे। समझ लेना मैं आ रहा हूं, मेरी ग्रेड ठीक हो रही है अगर मैं संकल्पों को रीड कर रहा हूं। आत्मा भी क्या है? आत्मा क्या है? एक एनर्जी है, वेव्स है। एनर्जी का अर्थ क्या है? वेव्स है। हम सब वेव्स हैं और हमारी वेव्स वाइब्रेशन जा रहे हैं, पूरे यूनिवर्स में जाते हैं। मेरा हर संकल्प पूरे वर्ल्ड में जाता है और वापस आता है। अगर मैं नेगेटिव सोच रहा हूं, नेगेटिव किसी के बारे में सोच रहा हूं, मेरे को वही प्रॉब्लम आ जाएगा जो उसको है। यहां तक एक बहन आई थी नीचे, उसने बहुत अच्छा अनुभव बताया, प्रैक्टिकल बताया कि मैं उसके बारे में नेगेटिव सोचती थी, वो उसकी बीमारी मेरे में आ गई। इसीलिए बाबा ने सिखाया पारस बुद्धि यानी इंटेलेक्ट, यानी स्पष्ट हो, क्लियर हो। पारस बुद्धि का दूसरा अर्थ क्या हुआ? सत्यता। सत्यता और सत्यता दो चीजों पर डिपेंड करती है। सत्यता एक है स्पष्टता, क्लियरिटी, और दूसरा है निर्भयता। ये मुरली है पूरी, अव्यक्त वाणी है सत्यता, सत्यता की शक्ति। गॉड इज ट्रुथ, ट्रुथ इज गॉड। पहली क्वालिटी हमें चाहिए इस यज्ञ में, सत्यता यानी स्पष्टता, क्लियरिटी। जो मैं अंदर हूं वही बाहर हूं, ट्रांसपेरेंट। जो मैं अंदर हूं वही बाहर हूं, ड्वेलिटी नहीं है। लोग सामने कुछ बोलते हैं, पीठ के पीछे कुछ भूखते हैं। तो क्लियरिटी, जो मैं अंदर हूं वही बाहर हूं। ट्रांसपेरेंसी का अर्थ है, ट्रांसपेरेंट का अर्थ है फरिश्ता, लाइट दिख रहा है, उसका हर बॉडी का पार्ट दिख रहा है। फरिश्ते का अर्थ क्या है? लाइट ही लाइट, हार्ट लंग सब लाइट 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 दिख रहे हैं। क्लियरिटी है, यहां भी क्लियरिटी है। और आने वाले समय में ऐसा ही होगा कि अगर हम सोच रहे हैं नेगेटिव किसी के बारे में, वो पकड़ लेगा अगर उसकी परखने की शक्ति अच्छी है। तो स्पष्टता, साफ साफ दिल, जो बाबा कहता सच्ची और साफ दिल, विशाल बुद्धि, एक वर्ड मेरे को शुरू से अच्छा लगा अव्यक्त वाणी का बाबा का, वो आज भी मैं पसंद करता हूं, वो वर्ड अपने ऊपर अप्लाई करता हूं, बेहद बेहद यानी अनलिमिटेड, हद यानी जड़ बुद्धि। जब हम हदों में आते हैं, ये मैं ये मैं ये मैं ये मैं, तो जड़ बुद्धि, हद यानी लिमिट, बेहद यानी पूरे यूनिवर्स से वो जुड़ा हुआ है, फिजिकली नहीं, वो वाइब्रेशन से पूरे वर्ल्ड से कनेक्टेड है और हमारे वाइब्रेशन ट्रांसफर हो रहे हैं। और जितना क्लियरिटी होती है तो हमारे निर्णय अच्छे होते हैं, डिसीशन अच्छे होते हैं, हमारी गट फीलिंग अच्छी होती है। ये नया वर्ड दे रहा हूं, अभी मैंने एडमिनिस्ट्रेशन में कराया था, गट फीलिंग। गट फीलिंग का अर्थ है, गट यानी होता है मेडिकली आते इंटेस्टाइन। हाथ उठाएं और कहें आई एम द बेस्ट, मैं सतो प्रधान हूं, प्योर हूं, सब कुछ ठीक है, आई एम हेल्दी, आई एम वेल्दी, आई एम ब्यूटिफुल, मैं जो हूं जैसा हूं बहुत अच्छा हूं, मैं खड़ा इसलिए नहीं कर रहा हूं कि लिमिटेशन है स्पेस का। तो निर्णय शक्ति और गट फीलिंग, निर्णय लेते हैं, डिसीशन हम लेते हैं हमारे आत्मा से, बुद्धि से, मन सोचता है, मन में संकल्प आते हैं और बुद्धि कहती है कर या ना कर, बुद्धि ब्रेक का काम लगाती है। मन में संकल्प आया, बुद्धि ने कहा कर या ना कर। पर आजकल क्या देखा जा रहा है, जो मन में आ रहा है कर दे रहे हैं, बुद्धि से पूछ ही नहीं रहे, बुद्धि को साइडलाइन कर दिया है। नॉर्मली हमारे थॉट्स इमोशन को कंट्रोल करते हैं, अवर थॉट्स कंट्रोल अवर इमोशन, हमारे संकल्प इमोशन को, भावनाओं को कंट्रोल करते हैं। पर आजकल क्या देखा जा रहा है, इमोशन कंट्रोल कर रहे हैं थॉट्स को, है मेरे को लेना ही है ये डिसीजन, चाहे अच्छा हो या बुरा मेरे को लेना ही है। तो वहां क्या हो गए, ईगो आ गया, जड़ बुद्धि हो गया। ईगो भी क्या है, जड़ बुद्धि। ईगो यानी क्या, अहंकार, अभिमान। अभिमान का अर्थ ही क्या, अभी अभी मुझे मान मिलना चाहिए, हाँ मैंने किया, क्रेडिट मेरे को नहीं मिल रहा है तो मेरे को प्रॉब्लम आ जाता है। इसीलिए जगदीश भाई जी इसी इधर ही क्लास कराते थे, मुझे याद आ रहा है, हम लोग बैठते थे दादियां इधर, न दिखना है न दिखाना है, अपने को देखना है, न दिखना है न दिखाना है, व्यक्ति की आधी एनर्जी इसी में चली जाती है, दिखाने में और दिखने में, क्रेडिट लेने में। क्रेडिट का भूखा है। यहां पर क्या सिखाया हमें? कोई क्रेडिट नहीं लेना। जो कर रहा है बाबा करा रहा है, मैं कर रहा हूं, मैं तो निमित्त हूं, वो करा रहा है, मैं बैठ गया इस पर, अब उसको जो कराना है कराए, जो 5000 वर्ष पहले कराया था करा रहा है, मैं थोड़ी करा रहा हूं। अब इसका क्रेडिट मैं ले लूं तो अहंकार आएगा, टाइटनेस आएगा, स्पॉन्डोलाइटिस आएगा, बैक पेन आएगा, नी पेन आएगा, क्योंकि मैं टाइट हो गया, मैं हूं। अभिमान का अर्थ ही क्या है? अहंकार का अर्थ ही क्या? मैं ही कर सकता हूं, अहंकार, अहंकार, मैं ही कर सकता और कोई नहीं कर सकता, मेरे बिना पूछे कुछ नहीं होना चाहिए, तो प्रॉब्लम आ गया। और आज के वर्ल्ड में, ग्लोबल वर्ल्ड में ये चलता नहीं है। वर्टिकल मैनेजमेंट नहीं चलता आजकल, हॉरिजॉन्टल मैनेजमेंट चलता। तुम मेरे से अच्छा कर सकते हो, करो 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 करो, मेरे से का ओनली तभी पूछो जब कोई प्रॉब्लम आए। मैं तो फरिश्ता हूं, मेरे को तो उड़ना है, मेरे को फंसना नहीं है ट्रैप में। तो सतो प्रधान बुद्धि का अर्थ ही है, पारस बुद्धि का अर्थ ही है वेरी क्लियर। वो हरेक के साथ क्लियर है, खुद के साथ, बाबा के साथ और ब्राह्मण परिवार के साथ भी वो क्लियर है। और जो जितना क्लियर होता है उसका हैंडलिंग पावर अच्छा होता है, वो अच्छी तरह हैंडल कर सकता है लोगों को। मैनेजमेंट में और कुछ नहीं चाहिए रहता, दादियां कोई मैनेजमेंट की डिग्री थोड़ी पढ़ी थी, सिंपल पढ़ाई पढ़कर इतने बड़े यज्ञ को संभाल रही थी। अब तो लोगों को पढ़ना पड़ता है, MBA करना पड़ता है, उसके बाद भी पढ़ना पड़ता है। पर लीडरशिप कैरेक्टर में क्या चाहिए? लीडरशिप कैरेक्टर में क्या चाहिए? मेन चीज यही चाहिए कि आप लोगों को कैसा हैंडल कर रहे हो, प्यार से हैंडल कर रहे हो, केयर दे रहे हो, अवेलेबल है लोगों के लिए, आई एम अवेलेबल। जो बड़ी दादी हमेशा कहती थी, यही पांडव भवन में क्लास कराकर आती थी, कुर्सी पर बैठ जाती थी, बड़ी दादी कहती थी मैं अब फ्री हूं, जिसको आना आ जाओ मिलो, ये लीडरशिप का कैरेक्टर होता, आई एम अवेलेबल। किसी को वो नहीं लगता था कि अरे कैसे मिले, अवेलेबल, जो पूछना पूछ लो। दादी जानकी जी नीचे जब हम देखते थे, उनकी एज 104 क्यों हुई, मैं उस पर अभी मेडिकल में लेक्चर है, काइंडनेस क्योर्स, नया टॉपिक है, लेटेस्ट टॉपिक है, काइंडनेस क्योर्स। काइंडनेस हमारी लाइफ की जिंदगी को बढ़ाता है। उसमें मैंने बड़ी दादी जानकी जी का देखा, हमेशा जब थोड़ा तकलीफ में थी तो व्हीलचेयर पे आती थी कॉन्फ्रेंस हॉल में। लोग पूछते थे आप तो कार में आ सकते हो ना, इतनी, बोला नहीं नहीं मेरे को मजा आता है, लोग मिलते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, बात करते हैं, मेरे को खुशी मिलती है, मेरा काम ही खुशी देना। हम लोगों का काम ही क्या है संगम पर? हम सब हीरो एक्टर हैं, हमारा काम ही क्या है? एक ही काम है, खुशी देना। जो निराशा में है खुशी देना, जो हॉस्पिटल में है उसको खुशी देना, खुशी बांटना है ना। हाउ आई कैन हेल्प, खुशी। मैं लीडर इसीलिए हूं, पूरा वर्ल्ड मेरे को देख रहा है, केवल बीके नहीं देख रहे हैं, पूरा वर्ल्ड देख रहा है। मैं द्वापर और कलयुग के बाद भी रूल करूंगा, वोटिंग पावर तो सब करेंगे ना, एंड में वोट सब डालेंगे, केवल बीके थोड़ी डालेंगे। और जिसकी जितनी कनेक्टिविटी है, कम्युनिकेशन अच्छा, उसको वोट ज्यादा मिलेंगे। और वो वाइब्रेशन में दे रहा हूं खुशी के, कोई भी मिले, लेबर मिले चाहे कोई मिले, सबसे खुशी दे रहा हूं। ऐसा नहीं कि वो आए तो हम नहीं देखे उनको, कोई भी आए देखना तो पड़ेगा ही, टच तो करना ही पड़ेगा। हम डॉक्टर हैं, हमें टच करना ही पड़ता, बिना टच के ये डायग्नोसिस नहीं होता। ऐसा थोड़ी मैं टच नहीं करूं, तो हरेक से कनेक्टिविटी और कम्युनिकेशन होगा। जितना हम सिंपल होंगे, सैंपल होंगे, उतना लोग हमसे कनेक्टेड रहेंगे और हमारा वोटिंग पावर बढ़ेगा। और इसीलिए बाबा कहता है पूरे यूनिवर्स में, विश्व में विश्व कल्याणकारी बनो। गोल्डन इंटेलेक्ट पारस बुद्धि का अर्थ ही है कि मैं विश्व कल्याणकारी हूं, बेहद में हूं, बेहद में हूं। हद में हुई नहीं, हद अपने आप चल रहा है, हद को मेरे को देखना नहीं पड़ता। अगर मैं बेहद में हूं तो मेरी हद की रिक्वायरमेंट भी पूरी हो जाएंगी, अपने आप होंगी, कोई ना कोई करेगा, इतना पावर है। पर उसमें टिकना आना चाहिए। तो हंस का अर्थ ही है नेगेटिव को पॉजिटिव बनाना। मैं हमेशा पहले एग्जाम्पल देता था, देखो हंस जब पानी में तैरता है, बतख तैरती है, तो कैसे तैरती है? पंख चलाकर, पांव नीचे चलते रहते हैं, पंख से पानी हटाती है, गर्दन को मोड़ती है। तो मैं देख रहा था कितनी अच्छी लीडरशिप है इसकी, क्या कर रही है, एफर्ट कर रही है, पुरुषार्थ कर रही है। पुरुषार्थ छोड़ना नहीं है, लोगों को लगता हम पुरुषार्थ छोड़ दें और बस बैठ जाएं, बाबा ने कभी नहीं कहा, वो आउटडेटेड हो गया। कर्म करते हुए, कर्म से न्यारा और फोकर में काम कर रहा हूं, जो भी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, चाहे कहीं भी, इधर हो या बाहर हो, जॉब हो ड्यूटी हो, करना ही है। जॉब और ड्यूटी में ही रहते मैं पावरफुल हो रहा हूं, ऐसा नहीं जॉब और ड्यूटी को छोड़ दूं, वो करना ही करना है। तो पांव चलते रहते हैं, पंख पानी को काटते हैं, नेगेटिविटी को काटते रहते हैं। किसी ने बोला टक, फेंक दिया, फेंक दिया। मैं वो गीत बजाता हूं जनरली, पर अभी आज वो गीत में ही मेरा वो रहता टोटल खेल। तीसरा, गर्दन को मोड़ती रह, सबसे हेलो कर रहा, हेलो हेलो हेलो, दृष्टि हरे को, तो कितना अच्छा लीडर है। तो हमें भी यही करना है, सीरियस नहीं हो जाना। हम निकलते हैं योग करके, सीरियस, ओम शांति, ये थोड़ी है कोई ज्ञान। मेडिटेशन से तो ताकत आती, चार्जिंग होती, खुशी आती, बल्कि दुगनी हो जाती खुशी। फिर उस चार्जिंग से लोगों से मिलो ना, उस एनर्जी से मिलो ना, लोगों को एनर्जी चाहिए। मैं सीधा कह रहा हूं आपको, 2 साल का मैं जितने भी शिविर ये सब कराए, लोगों को एनर्जी चाहिए, कुछ नहीं। मैं स्लाइड ले जाता हूं, अभी स्लाइड ले गया था 100, केवल 3 दिखा के काम हो गया। क्यों? खुशी दो, दो एनर्जी दो। तो हटाना आना चाहिए। एक राजा था, उसने सोचा कि मैं देखूं मेरे राज्य में कितने ईमानदार लोग हैं, अच्छे लोग हैं। उसने सड़क के बीच में 3-4 बड़े पत्थर रख दिए और खुद छिप गया एक पेड़ के पीछे, देखता हूं, ऑब्जर्वेशन करने लगा लोग क्या करते हैं। लोग आ रहे थे, पत्थरों को देख रहे थे, कोई इधर से जा रहा था, कोई इधर से, कोई राजा को गाली दे रहा था, कोई ये, अरे क्या ये सड़क नहीं बनाई, पत्थर रख दिए। एक किसान आया, किसान के उस पर गेहूं की बोरी थी, चलता हुआ आ रहा था, उसने देखा पत्थर हैं, तो बोरी को रखा साइड में और पत्थर को, दोनों तीनों पत्थरों को उठाकर फेंक दिया। जैसे ही उसने फेंका, नीचे एक थैली थी, तीनों पत्थर के नीचे, उसमें गोल्ड कॉइन्स थे, उसमें चिट्ठी थी, जो इस पत्थर को हटाएगा उसको ये गोल्ड कॉइन्स वो ले जा सकता है। तो वही बाबा हमें गोल्ड कॉइन्स दे रहा है, सत्युग त्रेता में ले जा रहा है, हम हटा रहे हैं और हमें सोने के सिक्के मिल रहे हैं, और सोने की दुनिया में जा रहे हैं। खुद को हटा रहे हैं, खुद की नेगेटिविटी को हटा रहे हैं, अपनी घोटव चढ़े नशा। मेरा सेकंड फेवरेट यही है, पहला है बेहद, सेकंड है अपनी घोट तो चढ़े नशा। किसी को देखना ही नहीं, अपनी घोटना। कोई गलती कर रहा करे, अपने को क्या, उसकी गलती से हम क्यों दुखी हो जाए। वो ड्रामा अनुसार अपना पार्ट प्ले कर रहा, अपन ने समझ लिया। कितना अच्छा लेसन है, स्ट्रेस 90% खत्म हो जाता है अगर वो लेसन क्लियर है कि हर आत्मा का पार्ट अलग अलग, हर आत्मा यूनिक है। हम कितनी एनर्जी बोलते हैं उसको, ये अरे क्या खत्म, उसका पार्ट है, वो अपने पार्ट में बंधा हुआ है। तो छोटी छोटी चीजें जो हमारे साथ होती है, होती है, हर एक के साथ होती है, पर अब उनको मैं ध्यान नहीं देता। वही छोड़ो, लेट गो करो। वो गाना वही था, आई लव यू जिंदगी, खुशी को आने दो और उदासी को जाने दो। लेट गो करो, हाथ उठाओ दोनों, बैठे बैठे ही करो। हाँ, उदासी को जाने दो, हाँ जाने दो, जाने दो, ताली बजाओ, जाने दो, जाने दो, खुशी को आने दो। आओ आओ, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे हो, सो गुड, सो ब्यूटीफुल। हर आत्मा बाबा ने क्या कहा, यूनिक है, डिफरेंट है। कितना अच्छा है, पावर आता है। मैं डिफरेंट हूं, मैं यूनिक हूं, मेरी जैसी आत्मा दुनिया में है ही नहीं। मेरे प्रॉब्लम मेरे हैं, और प्रॉब्लम तो आएंगे। ऐसा कभी नहीं सोचना हम ज्ञान में आ गए तो मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, अरे और ज्यादा ही आते हैं। कभी बोलना ही नहीं मेरे साथ क्यों हो रहा, तो और आएंगे। बोलना हाँ बहुत अच्छा हो रहा, हाँ हाँ बहुत अच्छा। जब प्रॉब्लम आए तो क्या कहना, गिफ्ट आ गई। हाँ हाथ उठाओ और कहो, प्रॉब्लम आ गया तो गिफ्ट आ गई, हाँ गिफ्ट है, बढ़िया गिफ्ट दी है। जितना मैं प्रॉब्लम से लड़ूंगा उतना पावरफुल हूंगा ना। प्रॉब्लम ही नहीं आए तो मैं तो वीक हूं, मैं कंफर्ट जोन में खेल खेल रहा हूं। हर कोई आत्मा क्या सोचती है, कंफर्ट जोन में खेल खेलें, कुछ नहीं बोले, कोई कुछ नहीं बोले, ऐसा होगा ही नहीं, ऐसा होगा ही नहीं। अनकंफर्टेबल बनना ही पड़ता है, और अनकंफर्टेबल जितना बनेंगे उतना मैच को जीतेंगे। एक लास्ट स्टोरी, एक लड़का है 15 साल का, उसका एक्सीडेंट हो गया था, उसका लेफ्ट आर्म को एम्पुटेशन कर दिया गया, निकालना पड़ा। बड़ा दुखी था, क्या एक हाथ तो चला गया। फिर जूडो मास्टर के पास आया, जूडो मास्टर ने कहा कोई बात नहीं, मैं तेरे को जूडो सिखाऊंगा। उसको ट्रेन करता गया और देखा कई महीने हो गए, एक ही उसको एक ही टेक्निक सिखा रहा था, एक ही टेक्निक में मास्टरी करा रहा था। उसको बोला भी मास्टर को, क्या एक ही टेक्निक, बोला हाँ बस एक ही सीख ले, पहले उसकी मास्टरी कर ले। और जैसे ही मैच शुरू हुए, मैच जीता गया, जीतता गया, जीतता गया। फाइनल में एक बहुत स्ट्रांग व्यक्ति आया उसके सामने, ये तो बच्चा 15 साल का। वो स्ट्रांग व्यक्ति ने सोचा अरे ये क्या करेगा, उसने अपना सब उठा के फेंक के उसके सामने खड़ा हो गया। और शुरू हुआ मैच और बच्चा जीत गया 15 साल वाला। तो उसने एंड में अपने गुरुजी से पूछा, मेरा तो लेफ्ट आर्म भी नहीं था, सब अच्छे थे, पर मैं कैसे जीत गया फाइनल। बोला गुरुजी ने कहा मैंने तेरे को एक ही दाव, इतनी मास्टरी करा दी थी उसकी, सतो प्रधान बना दिया था कि उससे बचने का उपाय केवल एक ही था, वो लेफ्ट आर्म को पकड़ना, बायां हाथ पकड़ना। वो तेरा था ही नहीं तो वो पकड़ नहीं पा रहे थे, और तू मैच जीत गया। तो क्या करना है, अपने अंदर की जो स्ट्रेंथ है उसको बड़ा करो, कभी भी अपनी कमजोरी को बड़ा ना करो। है कमजोरियां है, 99% कमजोरी है, पर एक तो है, तभी तो बाबा का बच्चा हूं, उसको बड़ा करो। मैं भी अपनी कभी कोई नेगेटिविटी को देखता ही नहीं, ना वर्णन करता, उसको लिखो भी नहीं, वर्णन भी नहीं करो, बेकार, और बढ़ा रहे हो आप उसको। आप अपनी स्ट्रेंथ को लिखो, बाबा के सामने भी लेटर लिखना है तो अपनी स्ट्रेंथ का लिखो कि मेरे में ये असीम शक्ति है, मेरा यूज करो, बस, तो बाबा यूज करेगा। नेगेटिविटी जितना बोलेंगे लिखेंगे तो उतना और बढ़ेगी और सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव हो जाएगा, प्रोग्रामिंग और स्ट्रांग हो जाएगा, हैबिट ही बन जाएगी, एडिक्शन हो जाएगा, तो वो कभी नहीं करना। अपनी जो एक शक्ति है, गुण है, उसको आप बड़ा करते रहो, जिसको हम लोग कहते हैं सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस, सी आई। जितना सी आई को बड़ा करोगे तो सी सी सर्कल ऑफ कंसर्न कमजोर हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। मैंने अपनी स्ट्रेंथ को बड़ा किया तो वो कमजोर हो गया। हम क्या करते हैं, सर्कल ऑफ कंसर्न को बड़ा करते रहते हैं, अरे ये हूं मैं, गरीब हूं मैं, ये हूं मैं, ये हूं, तो वो बढ़ता जाता है और बढ़ता है, तो हमारी जो शक्ति है वो भी खत्म हो जाती है। वीकनेस को कभी बड़ा नहीं करो, वीकनेस को स्ट्रेंथ में कन्वर्ट कर दो। जो मेरी कमजोरी है उसी को बदल देना है, शक्ति में बदल देना है, जो बच्चे ने की, कि तब हम आगे जाकर बढ़ते जाते हैं। तो एंड करते हैं, जड़ बुद्धि यानी विकार है, देहाभिमान है, जो कलयुग के जितनी भी कवरिंग कर ली है हम, वो हो गए हैं, पत्थर बुद्धि हो गए हैं, निर्णय नहीं ले पा रहे हैं, निराशा है, खुशी नहीं है। और सत्वप्रधान बुद्धि क्या है, खुशी है, उमंग है, उत्साह है। आज भी था ना, नवीनता करो, नवीनता करो, हर चीज में नवीनता करो, रोज नवीनता करो, जो अच्छा लगता है उसमें नवीनता करो, जैसे आपको अच्छा लगता है वैसा करो। जरूरी नहीं कि जो मैं कह रहा हूं वो करो, जो आपको अच्छा लगता है उसमें नवीनता लाओ। नवीनता लाएंगे तो उमंग उत्साह रहेगा, उमंग उत्साह रहेगा तो हमारी बुद्धि गोल्डन एज वाली बनती जाएगी। गोल्डन एज है ही परफेक्ट, परफेक्शन, सतो प्रधान बुद्धि, एक भी उसमें नेगेटिविटी मिक्स नहीं है। आ भी रही है तो उसको क्या कर देना है, रिप्लेस कर देना है। डर आता है, घबराहट आती है, पर क्या कर देना है, उसको रिप्लेस कर देना। काय से रिप्लेस करना है, अगर डर आ रहा है तो शक्ति से रिप्लेस कर देना। हाथ उठाओ और कहो, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, मास्टर सर्वशक्तिवान, असीम शक्ति है, बाबा मेरे साथ है, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, आई एम हेल्दी, मेरे को रोज गिफ्ट देता है बाबा, रोज गिफ्ट मिलती है। वो चैलेंज दे बाबा हमें, माया चैलेंज करे, हम क्या करें, उसको गिफ्ट में बदल दें। अगर चैलेंज नहीं आए तो समझना गिफ्ट नहीं मिल रही है, फिर वही का वही कर रहे हो जो करते आए हो। करने में कब आता है मजा, जब चैलेंज आता है। देखो अभी भी एक मैच में उसने लास्ट ओवर में चैलेंज आया तो बनाए उसने, खिलाड़ी ने, और मैच जीता तो क्या खुशी पूरे वर्ल्ड में थी। तो ऐसा ही हमें भी चैलेंज नहीं आएगा तो हम डल हो जाएंगे, तो घबराना नहीं है। क्या करना है, गिफ्ट मिल रही है, बहुत अच्छी गिफ्ट है, मैं बहुत अच्छा हूं, आई एम ब्यूटिफुल। ओम शांत।
खुशियों के गीत सदा दिल से गाए जा,
खुशियों के गीत सदा दिल से गाए जा,
मुश्किलों में भी सदा तू मुस्कुराए जा,
खुद पे भरोसा कर, खुदा पे यकीन,
खुद पे भरोसा कर, खुदा पे यकीन,
गाए जा,
खुशियों के गीत सदा दिल से गाए जा,
मुश्किलों में भी सदा तू मुस्कुराए जा,
खुशियों के गीत सदा दिल से गाए जा, खुशियों के गीत सदा की भलाई का ही वो काम करते हैं, हाँ वो काम करते हैं,
नित्य नया वो इतिहास रचते हैं, मर के अमर
है वो कभी नहीं मरते हैं, खुशियों के गीत सदा दिल से गाए जा,
मुश्किलों में भी सदा तू मुस्कुराए जा,
खुद पे भरोसा कर खुदा पे यकीन,
खुद पे भरोसा कर खुदा पे यकीन,
कदमों में कामयाबी तू झुकाए जा,
खुशियों के गीत सदा दिल से गाए जा,
मुश्किलों में भी सदा तू मुस्कुराए जा, खुशियों के गीत सदा।
खुशियों के गीत दिल से सदा गाए जा, तो क्लास का कुछ ऐसा ही असर था। तो एक हाथ हिलाकर भ्राता जी को धन्यवाद, शुक्रिया, आभार।